मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
इस घड़ी में कार्यक्रम महिमा के वचन सुनने के लिए फिर से आपका स्वागत है। आइए इस गीत से प्रभु की प्रशंसा करते हुए हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करें। विज्ञान के जानकारी के अंतर्गत प्रिय श्रोता, आइए आज हम धरती पर कार्बन की कमी के रहस्य के बारे बातें करें। विज्ञान हमें यह बतलाता है कि धरती पर के सभी जीवित प्राणी और सभी प्रकार का जीवन कार्बन पर आधारित है। मूल रूप से कार्बन वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही आता है। जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर के हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु इसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और जब जानवर इन हरे पौधों एवं पत्तियों को खाते हैं तब उनमें से कुछ कार्बन को वे ग्रहण कर लेते हैं, और फिर जब जीवित प्राणी सांस छोड़ते हैं या मर जाते हैं या मरे हुए जानवर सड़ जाते हैं तब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैल जाता है। लेकिन प्रिय श्रोता, शायद आज हम में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि वर्तमान समय में आश्चर्यजनक रूप से हमारी धरती पर कार्बन की कमी है, जबकि पृथ्वी की तुलना में सौर मंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मौजूद है, और तो और सूर्य भी कार्बन का भंडार है। पारंपरिक तौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि पृथ्वी के बनने के समय तापमान 1800 केल्विन से ऊपर जा पहुंचा और धूल की पट्टी में मौजूद कार्बन उस तापमान पर जल गए। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सौर मंडल के निर्माण पर जो शोध किए गए हैं उनके अनुसार धरती से सूर्य की दूरी इतनी थी कि कार्बन के वाष्पीकरण के लिए यह तापमान बहुत ज़्यादा नहीं था। पिछले दिनों साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के सिजोंग विश्वविद्यालय और अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस पर एक शोध किया, और उन्होंने यह बताया कि सौर मंडल के भीतरी हिस्सों में लगी आग ने पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के कार्बन को जला डाला। शोधकर्ताओं ने यह भी बतलाया है कि धूल में मौजूद गर्म ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ संयोग किया और जलकर वे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस बन गए, और इस प्रकार से पृथ्वी पर कार्बन की कमी के रहस्य पर से पर्दा उठने लगा है, क्योंकि शोध कार्यों से यह पता चला है कि सौर मंडल ने कार्बन के एक बड़े अंश को जला डाला है। मित्र, मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे, ऐसी क्या बात है? असल में यह बात संगीत की धुन और हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है। यह तो सच है कि बच्चे से लेकर जवान, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी संगीत के दीवाने हैं, अर्थात संगीत सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। मित्र, आश्चर्य की बात यह है कि हमारा दिमाग स्वयं संगीत की धुन पैदा करता है, और ये धुन प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर की थकान दूर करती हैं और हमारे अंदर उत्साह एवं आनंद को जगाती हैं। वैज्ञानिक अब ऐसे धुन को पहचान कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वे पियानो के माध्यम से इन धुनों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि वे इसमें कामयाब हो गए तो ऑफिस में दिन भर काम के बोझ से थक कर जब आप पस्त होकर घर लौटेंगे तो इस ब्रेन म्यूजिक या दिमागी संगीत के जरिए कुछ ही मिनटों में फिर से अपने आप को तरोताजा बना सकेंगे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी निदेशालय ने इस विषय पर अध्ययन शुरू किया है, और उनका उद्देश्य ऐसा ब्रेन म्यूजिक बनाना है जिसकी फ्रीक्वेंसी, समय और आवाज़ ठीक वैसी ही हो जैसा हमारे दिमाग के म्यूजिक का होता है। वैज्ञानिक अभी इसके जरिए दिमाग की दो स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली, रिलैक्स करना अर्थात थकान कम करना, और दूसरी, नींद के गुण में सुधार लाना, तो चलिए अब दिमागी बोझ को हल्का करने के लिए दिमागी संगीत का इंतजार कीजिए।
क्या ही धन्य होगा वो जो तुझे जानता, तुझको ही अपना प्रभु प्रेमी मानता। हाँ, क्या ही धन्य होगा वो जो तुझे जानता। समझा के कहूँ यीशु ही प्रभु है मेरी कौन मानता। क्या ही धन्य होगा वो जो तुझे जानता, तुझको ही अपना प्रभु प्रेमी मानता। क्या ही धन्य होगा वो जो तुझे जानता। सभी को ये ज्ञान जानता।
परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जी हां, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। क्या आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होता कि इस दुनिया में कई देश और महादेश हैं जिनमें कई जाति धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। सबका रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति सब कुछ अलग अलग है। अब जरा सोचिए कि इस संसार में अरबों लोग रहते हैं और इन अरबों लोगों की इस आबादी में से यदि परमेश्वर सिर्फ आपसे कहे कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो समझता हूँ कि यह तो मेरे लिए बड़े आनंद की बात होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने संसार की सारी चीज़ों को बनाया, जो सारी मानव जाति का सृजनहार है, जो सबका स्वामी है, वह संसार के प्रत्येक जन का नाम जानता है। प्रिय मित्र, यदि कोई आपसे या मुझसे कहे कि अपने देश के लोगों का नाम बतलाओ, तो क्या आप बतला पाएंगे? अच्छा ठीक है, देश का ना सही, पर क्या अपने राज्य या अपने क्षेत्र के लोगों का नाम आप बतला पाएंगे? जी नहीं, यह बिल्कुल असंभव काम है। मैं या आप तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, मगर हमारा परमेश्वर संसार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम जानता है, क्योंकि वह सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्व उपस्थित परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आप गोरे हैं या काले, लंबे हैं या नाटे, अमीर हैं या गरीब, चाहे आप कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हैं, चाहे दुनिया में लोग आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आप जो कोई भी हैं, जैसे भी हैं, यहोवा परमेश्वर आपको जानता है। वह आपका नाम भी जानता है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपसे कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रिय मित्र, आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा स्वामी आपको जानता है। उसने आपको चुना है और आपके जीवन से उसकी महान योजनाएं जुड़ी हैं। आप इस पृथ्वी में अचानक या इत्तेफाक से नहीं आ गए हैं, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं आपको यहाँ रखा है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 65 पद 4 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने निकट लाता है कि तेरे आंगनों में वास करे। प्रिय मित्र, हम सब धन्य लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने निकट लाया है। धन्य का अर्थ है आशीषित। परमेश्वर ने न सिर्फ हमें चुना है बल्कि सब प्रकार की आशीषें दी हैं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यहाँ एक और खास बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना तो है और अपने निकट भी लाया है, मगर क्या आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है? आइए मैं आपको बतलाता हूँ। उसने ऐसा इसलिए किया है कि हम उसके आंगनों में वास करें, वहाँ रहें। भजनकार भजन संहिता अध्याय 90 पद 1 में कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा निवास स्थान बना हुआ है। और भजन संहिता अध्याय 91 पद 1 और 2 में कहता है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। जी हाँ, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा निवास स्थान और ठिकाना है। वही हमें हरेक खतरे और मुसीबत से बचाता है, इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर न सिर्फ हमारा निवास स्थान है बल्कि वह हमारा मित्र भी है। जब हम उसके निकट उसके साथ रहते हैं तो हम उसके मित्र बन जाते हैं। एक बात और जान लें कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके निकट आएं, उसके आंगनों में वास करें, उसके मित्र बन जाएं। यह चुनाव उसका है, उसने हमें चुना है, इसलिए नहीं कि हम में कोई खूबी या कोई योग्यता है। उसने हमें अपने बड़े अनुग्रह के कारण चुना है। बाइबल बहुत से लोगों के बारे में बतलाती है जिन्हें परमेश्वर ने चुना था और उनके द्वारा उसने बड़े बड़े काम भी किए। उनमें से एक व्यक्ति है जो इसराइलियों का मूल पुरुष बना, उसका नाम इब्राहिम था, जिसे परमेश्वर ने मित्र का दर्जा दिया। उसके जीवन से परमेश्वर की योजना थी कि वह उसके द्वारा दुनिया के लोगों को आशीष दे। संसार के सभी जातियों के उद्धार की योजना का आरंभ परमेश्वर द्वारा इब्राहिम की बुलाहट से होती है। यह एक प्रतिज्ञा से शुरू होती है जो एक आज्ञा से जुड़ी है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दें मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। प्रिय मित्र, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी तो उसने विश्वास के साथ उस आज्ञा का पालन किया। इन सब को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्यों सच्चे और जीवित परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना और अपने आप को प्रकट किया जो उसे खोजने वाला नहीं था, जो उसकी उपासना भी नहीं करता था? इसका उत्तर है, अपने अनुग्रह के कारण। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था, इब्राहिम ने परमेश्वर को नहीं चुना था। कहने का अर्थ है कि चुनाव करने में परमेश्वर ने पहल की थी, जिसका उत्तर इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा दिया। वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी चुना है कि हम भी विश्वास के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दिखलाएं, उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसे उदाहरण के लिए, कोई लड़का किसी लड़की से विवाह के संबंध में उसके मन की बात पूछता है, लेकिन यह उस लड़की के उत्तर के समान है जो विवाह के उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उसकी पत्नी होने के निमंत्रण को स्वीकार करती है। विश्वास भी परमेश्वर द्वारा चुने जाने के बाद की हमारी प्रतिक्रिया है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है तो वह उस प्रेम के संदेश को ग्रहण करता है जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारी मानव जाति को दिया, और यह उस व्यक्ति का अपना फैसला होता है। लेकिन मेरे प्रिय मित्र, विश्वास के साथ कदम बढ़ाना, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना, उसकी आवाज़ को सुनना और उसके पीछे चलने के फैसले के द्वारा हम अपनी प्रतिक्रिया दिखलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठते हैं। वे हैं, इब्राहिम ने कैसे जाना कि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, जबकि उसने पहले परमेश्वर को कभी नहीं जाना था? उसने कैसे जाना कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और कैसे उसने सोचा कि इस परमेश्वर पर वह भरोसा रख सकता है? इब्राहिम ने यह विश्वास कहाँ से पाया? उसने कैसे सोचा कि उसे उस आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए जिसने एक प्रतिज्ञा के बदले उसे सब कुछ त्याग देने को कहा? मेरे प्रिय मित्र, विश्वास के साथ उठाया गया हमारा कदम हमें उस प्रतिफल की ओर ले जाता है जो उस आज्ञा से जुड़ी प्रतिज्ञा की आशीष में है, जो हमारी कल्पना से परे है। पर इसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ त्याग करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दें कि इब्राहिम की बुलाहट सब कुछ त्यागने की आज्ञा से आरंभ होती है। यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा। जरा इस बात पर विचार करें कि इब्राहिम के लिए ऐसा त्याग करना कठिन था जिसमें उसे अपना जमीन जायदाद, अपना देश, अपने कुटुंबी सब कुछ त्याग करना पड़ा। अगर मानवीय दृष्टिकोण से कहा जाए तो वह संसार का त्याग कर रहा था, क्योंकि इब्राहिम मेसोपोटामिया के उर नगर में रहता था। मेसोपोटामिया की भूमि उपजाऊ थी, जिसमें सभ्यताएं फूलती फलती थीं। वहां संस्कृति, कला, लेखन, संगीत, गृह निर्माण और विज्ञान की उत्पत्ति हुई। इब्राहिम इन सब को छोड़कर परमेश्वर की आज्ञानुसार मरुभूमि में जाने के लिए तैयार हो गया। प्रिय मित्र, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसने कैसे ऐसा किया? जब परमेश्वर उसके पास आया तो उसने उसकी आज्ञा और प्रतिज्ञा को सुना और सुनकर एक बहुत बड़ा फैसला किया। यह उसके जीवन का सबसे निर्णायक फैसला था। जब वह जा रहा था तो शायद उसके मित्र, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उससे कहते होंगे, अब्राहम, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम सचमुच इस बड़े और संपन्न देश को छोड़कर जा रहे हो? तुम क्यों अपनी धन संपत्ति, परिवार, नौकर चाकर, पशु सब कुछ लेकर एक ऐसे देश को जा रहे हो जिसके विषय में तुम कुछ नहीं जानते? इस देश से निकलकर तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। होश में आओ अब्राहम, ऐसी मूर्खता मत करो। तुम कहते हो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, अरे ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। देखो, यहाँ हमारे पास सब कुछ तो है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वहाँ जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? प्रिय मित्र, जरा सोचिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसने कैसे दिया होगा। शायद उसने कहा होगा, नहीं, मुझे जाना ही होगा, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने ही मुझसे कहा है। जी हाँ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और अपने देश को छोड़कर प्रतिज्ञात कनान देश की ओर चल पड़ा। उसके इस फैसले ने, उसके द्वारा उठाए गए कदम ने पूरे इतिहास को बदल दिया। इसी कारण वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। उसने संसार की वस्तुओं और मित्रों को छोड़ एक ऐसे मित्र से मित्रता कर ली जो सच्चा है, जिसकी सारी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, जो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जहां जहां भी तू जाए, वहां वहां तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। मेरे प्रिय मित्र, यह प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। परमेश्वर हमें भी अपना मित्र बनाना चाहता है। सांसारिक मित्र हमें छोड़ सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, हमें बुराई के गर्त में गिरा सकते हैं, मगर हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता कहता है, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। वह हमें प्रेम करता है, इसलिए वह हमारी भलाई की योजनाएँ बनाता है। वह हमें आशीष देना चाहता है, जिस प्रकार उसने इब्राहिम को दिया था। लेकिन इस आशीष को पाने के लिए इब्राहिम को कुछ त्याग करना पड़ा था। आज हमें भी कुछ त्याग करना होगा। अपने पुराने पापमय स्वभाव को छोड़ना होगा, अपनी बुरी और गंदी आदतों का त्याग करना होगा, तभी हम परमेश्वर की उन आशीषों के हकदार होंगे जिसकी प्रतिज्ञा वह आपसे और मुझसे करता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, जो कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रिय मित्र, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ ही हाँ हैं। यदि यीशु के पीछे चलने के लिए आप तैयार हैं तो इब्राहिम की तरह संसार और अपने आप का इनकार करें। आप आज ही ऐसा करें। प्रिय मित्र, जब आप यीशु के पीछे चलना आरंभ करेंगे तो हो सकता है इसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, मगर उनकी ओर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि लगाए रखें। वही आपको सही मार्ग में ले चलेगा। मेरे प्रिय मित्र, आज जो हमने इब्राहिम के जीवन से कुछ बातें देखी, उन्हें फिर से देखें। सबसे पहली बात, इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर बोलता है। उसने इब्राहिम से बातचीत की। वह आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है, इसलिए सुने कि वह आपसे क्या कहना चाहता है। दूसरी बात, जो बातें वह कहता है उस पर विश्वास करें, जैसा इब्राहिम ने किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। उस पर भरोसा रखें क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर है। तीसरी बात, उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर विश्वास करने के बाद रुके नहीं, बल्कि उसके अनुसार कार्य करें, जैसा इब्राहिम ने किया और विश्वास से कदम बढ़ाया। फिर उसके बाद देखें कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देता है, और इस बात को भी देखें कि किस प्रकार वह आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष देता है और आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। यह बहुत सरल है, सिर्फ विश्वास करें और आज्ञा मानें। परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। आमीन।
प्रिय श्रोता, क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के संदेश ने आपके हृदय में काम किया है? तो अपना अनुभव हमें अवश्य लिख भेजें। संपर्क के लिए पता नोट कर लें। महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार पुनः मिला लें। महिमा के वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 09835983759। नंबर फिर से मिला लें, 09835983759। कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सोनाली को अनुमति दीजिए। नमस्कार।